This is an ABP Life podcast.
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो अभी मैंने बोला ये मेरे नहीं बाबा भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल उसकी नींव है उसकी फाउंडेशन है। ये ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं भारत के संविधान के। ये आपने शायद बचपन में सिविक्स की क्लास में पढ़ा होगा। आज मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। बाबा भीमराव अंबेडकर केवल संविधान के रचनाकार ही नहीं बल्कि देश में बहुजन और दलित समुदाय के लीडर भी रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर स्वयं दलित समुदाय से आते हैं। बाबा साहिब ने देश में जातिवाद पर कई किताबें और एसेज लिखे हैं जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है अनहाइलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा का विनाश। ये बाबा साहिब ही तो थे जिन्होंने देश में हर इंसान को एक समान दर्जा दिलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। भारत का संविधान किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि कई तरीके के अलग अलग संविधान पढ़कर बनाया गया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता रहा है मगर मेरे हिसाब से एक सरकारी कागज पर हमारे हक लिख के जाना एक बड़ी मुहिम का कंक्लूजन था और मुहिम के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। संविधान का शोर मचाने वाले अक्सर वो बातें और चीजें भूल जाते हैं जो बाबा साहेब की जिंदगी के आदर्श थे। संविधान का आदर्श था जो संविधान की नींव थे जातिवाद और मनुवाद से मुक्ति। इसी मुक्ति के लिए उन्होंने रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का प्रावधान भी बनाया था। उनका मोटो था शिक्षित बनो संगठित रहो और आंदोलन करो टू एजुकेट टू मोबिलाइज एंड टू एजिटेट। शायद उन्हें पता था कि कागज पर आरक्षण का प्रावधान ही काफी नहीं होगा जातिवाद मिटाने के लिए। ये एक लंबी लड़ाई है और ये चलती रहनी चाहिए। बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चल के दलित पॉलिटिक्स ने दोस्तों जन्म लिया। सालों पहले दलित पार्टियां तो बनी मगर कमान हमेशा एक सवर्ण यानी एक अपर कास्ट के हाथों में होती थी। किसी बात पर अगर देखा जाए तो बसपा पार्टी की बहन मायावती इन सभी मापदंडों को चैलेंज करती हुई एक दलित महिला लीडर के रूप में सामने आई मगर ये भी एक एक्सेप्शन ही था। हालांकि वक्त और सोशल मीडिया के साथ साथ दलित पॉलिटिक्स भी बदली। आज औरतें भी जोरों शोरों से दलित पॉलिटिक्स की कमान संभाले हुए हैं। नारीवाद को भी दलित पॉलिटिक्स में जगह मिली।
पिछले साल अंबेडकर जयंती पर यहीं इसी मंच पर हमने दलित नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट महिला मनीषा मशाल से उनकी विचारधारा उनके संघर्षों उनके नारीवाद और उनकी संस्था स्वाभिमान सोसाइटी के बारे में बात की थी। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने दिया है चाहे तो आप वो जाकर दोबारा सुन सकते हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं दलित समुदाय से आने वाले मशहूर एंटी कास्ट रैपर सुमित समोस्तुरुक से। मोस्टली लोग इन्हें जानते हैं मगर यदि आपको रैप में स्पेशल दिलचस्पी है तो आप सुमित समोस को जरूर जानते होंगे। सुमित ओडिशा से आते हैं इस समय ऑक्सफोर्ड कॉलेज में अपनी दूसरी मास्टर्स की डिग्री पर काम कर रहे हैं। सुमित का पहला एंटी कास्ट रैप 2018 में रिलीज हुआ था और तब से लेकर अब तक देयर हैज बीन नो टर्निंग बैक फॉर हिम चाहे पढ़ाई ले लें एक्टिविज्म ले लें या संगीत। ही यूजेस हिज रैप टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आइए उनके रैप के कुछ बोल हम आपको पहले सुनाए देते हैं।
Yeah, Dalit boy on the mic, representing counterculture, hip hop from the ground. hip hop from the ground. जन्म लिया मैंने जब से तब से तब गुनेगार लगा मुझ पे फट से पूछता सवाल मैं क्यों हजार जाते हैं इतने सारे सालों से गुलामों के बाजार में तू इंसानों की झुंड में कि ऊपर नीचे भाग है। बस इतना ही कहूंगा, मर के भी जीना है, हम लड़ाई सीख ले।
ये था सुमित का पहला एंटीकास्ट रैप गाना, यूट्यूब पर लड़ाई सीख ले नाम से आपको मिल जाएगा अगर आपको देखना है। उसके बाद सुमित ने कई और रैप सॉन्ग्स बनाए, मगर पढ़ाई उन्होंने नहीं छोड़ी। आफ्टर ऑल बाबा भीमराव अंबेडकर का भी यही मानना था कि शिक्षा सबसे जरूरी है, उसी से संगठन बनते हैं, उसी से आंदोलन चलते हैं। तो जी, आज हमने सुमित से दलित इतिहास और दलित एक्टिविज्म पर बात की है। भारत में एंटी कास्ट सिनेमा से लेकर के संस्थानों और समाज में होने वाले भेदभाव तक और दलित एक्टिविज्म के अंदर और बाहर की राजनीति, सभी मुद्दों को हमने छूने की कोशिश की है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स हियर फ्रॉम सुमित हिमसेल्फ। हाय सुमित, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट FII।
हाय साहिबा, थैंक यू सो मच।
जी, लोग दलित हिस्ट्री को बहुजन एक्टिविज्म और बहुजन हिस्ट्री से एक ओवरलैप हो रहा है,
तो एंटी कास्ट मूवमेंट जो है उसके अंदर दलित हिस्ट्री एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रीम है। और ये स्पेसिफिक स्ट्रीम इसीलिए है क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर 1920 से लेके वो जब ब्रिटिश उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश राज की गवर्नमेंट थी, उनके सामने वो बार बार पेटिशन करते रहते थे कि जो अनटचेबल कास्ट है इनका एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। और ये सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है और इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसमें उस टाइम कुछ कुछ रिफॉर्म्स हुए थे जिसमें कि इंडिया के लोग भी वहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, तो वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि हम लोग खुद का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अपने लोग खुद का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एक सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दलित आइडेंटिटी धीरे धीरे क्रिएट हुआ। तो उस टाइम उसको कहा जाता है डिप्रेस क्लासेस, और वो डिप्रेस क्लासेस बाद में जाके शेड्यूल कास्ट बन गई। दलितों का एक्सपीरियंसेस बहुत स्पेसिफिक है और बहुत यूनिक है। वो गांव के बाहर रहते हैं, जो अनटचेबिलिटी, एक सेपरेशन ऑफ लाइफ, मैरिजेस उनके साथ नहीं होता है, उनके साथ खाना मतलब बैठ के लोग खाते नहीं है एक साथ, उनके साथ मिलते जुलते नहीं है एक साथ। तो मतलब ऑक्सफोर्ड में भी मैं आ गया तो वहां पे भी आपको लग जाता है धीरे कि आप अलग है उनसे, मतलब अलग इंडियन स्टूडेंट से आप अलग है। दिस सेंस ऑफ जो बींग अदर itself is rooted in कि you come from a certain kind of background और आपका history उसी से जुड़ा हुआ है, उस identity से जुड़ा हुआ है। और मेरा ये कि मैं दलित और जो बहुजन identity उसको मैं I'm not posing it against each other, और उनकी history भी कभी कभी similar है, जैसे फूले हो गया, पेरियार हो गया, और फिर फूलन देवी हो गई। तो there are some very मतलब icons who come from these backgrounds जो दोनों के लिए common है। दलितों को एक मतलब हिस्टोरिकली उनको अपना स्पेस नहीं मिला है, चाहे वो अगर आप दलित हिंदी साहित्य का भी मतलब बात कर ले तो उसमें भी दलित राइटर्स हैड टू राइट ऑटोबायोग्राफीज टू अपना एक नया स्पेस क्रिएट करने के लिए। पॉलिटिक्स में भी उनको मतलब एक अपना स्ट्रगल करना पड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि अरे दलित हिस्ट्री मंथ अगर मना रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर लो कास्ट। इट्स नॉट अबाउट एक्सक्लूडिंग, इट्स जस्ट दैट इट्स वेरी स्पेसिफिक, तो इसको एक स्पेसिफिक तरीके से सेलिब्रेशन किया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुस्लिम फेस्टिवल है लोगों का, तो यू गो एंड पार्टिसिपेट, यू अप्रिसिएट, यू सेलिब्रेट, बट तुमको भी पता है कि देर इज अ सर्टन वेरी स्पेशल स्पेसिफिक कुछ रिलेशन है उनका गॉड के साथ विच यू एक्नोलेज। द सेम वे इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनियस राइट्स विच इज वेरी स्पेसिफिक टू आदिवासी प्रॉब्लम्स, आदिवासी हिस्ट्रीज, आदिवासी कल्चर।
Right. सुमित, तो क्या आपको लगता है कि वह एक माइक पासिंग का भी एक प्रॉब्लम है लोगों में कि उनको माइक नहीं पास करने देना है, उनको अपने ही सर्किट में रखना है जो कुछ बातें हो रही हैं, जो डिबेट्स हो रही हैं?
देखिए मतलब इसके बारे में बहुत सोचा है, और मैं जब भी मतलब कुछ क्योंकि मैं अभी मतलब यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा हूँ, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कुछ कुछ जैसे फील्ड वर्क मैंने पढ़ा, मतलब दलितों के ऊपर मैंने कुछ फील्ड वर्क पढ़ा जो कि दलितों ने लिखा नहीं है। This is written by one or two upper caste people, कोई white faculties, they have written, और मुझे उनके काम बहुत अच्छा लगा। I mean, कुछ कुछ थोड़ा बहुत criticism हो सकता है मुझे, लेकिन लगा कि ये genuine काम है। मुझे अगर दलित history के बारे में बताना होगा तो मैं उनको refer कर सकता हूँ, because मुझे लगता है कि this is very genuine. But majority of the times what happens is, जो gaze होता है दलितों को represent करने का, उनके बारे में बात करने का, it is either very, मतलब एक victimized करने का होता है या फिर क्रिमिनलाइज करने का होता है, और फिर एक दो टॉपिक पकड़ के, मतलब अगर दलित रिजर्वेशन के बारे में फाइट करते हैं तो सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात करो, उनके ऊपर वायलेंस होता है, दलित वुमेन के ऊपर वायलेंस हो रहा है तो सिर्फ वायलेंस के थ्रू ही तुम दलितों के बारे में बात करो। तो ये नजरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलित आर ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स एज एवरीबडी एल्स, एंड तो उनके लाइफ में भी नुआंसेस है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, उनके मूवमेंट में भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, उनके भी होप्स है, एस्पिरेशंस है, उनके कल्चर है, लिटरेचर है. तो इट्स वेरी वाइब्रेंट, इट्स वेरी डायनामिक. इट्स नॉट इवन अबाउट गेट कीपिंग, इट्स जस्ट वेरी जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ कि अगर आपका काम है तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे. गेल ओम्बेट हो गया, एलेना ज़ेलेट हो गई, दीज आर वाइट वुमेन.
अगले सवाल पर हम आते हैं सुमित, कि आप एक रैपर भी हैं और आप एक एंटी कास्ट रैपर हैं, एंड व्हाई डिड यू चूज रैप एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट?
हाँ नहीं, एक बात, एक चीज तो ये है कि जैसे कुछ कुछ मीडियम्स है विच आर वेरी एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, जैसे रैप हो गया, उसमें आपको मतलब उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए या फिर कोई मतलब क्लासिकल गुरु या कोई ऐसे सिंगर के पास आपको जाना नहीं है ट्रेनिंग करने की. और फिर ऐसे कुछ कुछ मतलब लोकल जो ट्रेडिशन है, जैसे तमिलनाडु में गाना एक ट्रेडिशन है और मतलब उड़ीसा में एक डोम बाजा एक मतलब दीज आर वेरी ट्रेडिशंस विच आर पार्ट ऑफ लाइक दलित कम्युनिटी. महाराष्ट्र में भी जो एक ट्रेडिशंस है मतलब स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन. रैप इज लाइक दैट, मतलब कि इट्स जस्ट अ वेरी रॉ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. और लाइक उसका रैप, उसका हिस्ट्री भी वैसा ही है. US में जब शुरू होता है इट्स जस्ट बंच ऑफ एंग्री एजिटेटेड पीपल टॉकिंग अबाउट देयर हिस्ट्री, मोस्टली ब्लैक यूथ्स टॉकिंग अबाउट इनकार्सरेशन. वो रेसिज्म के खिलाफ वो बात करते हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ वो लोग बात करते हैं. तो वो एक इन्फ्लुएंस आ जाता है कि हम भी मतलब वैसे कर सकते हैं, हम भी मतलब उनके जैसे हैं. JNU जैसे जगह में क्या होता है ना कि हाँ भगत सिंह तू जिंदा है, मतलब बहुत डिप्रेसिंग गाने मतलब डपली लेके गाते रहते हैं. तो वो कभी कभी लगता है कि नहीं यार, मतलब गाँव में, मतलब जिस गाँव से टाउन से हम लोग आते हैं वहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा डिप्रेशन है और इतना ही मतलब ये है, तो JNU आके फिर वो नहीं करना है. यू नो JNU आके थोड़ा लाइक समथिंग वेरी हैपनिंग, समथिंग कुछ तो नया करना है, राइट? सिर्फ आर्टिकल लिख के नहीं होगा कुछ, या फिर पर्चा पोस्टर लिख के कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए. दिन रात लोग मतलब आपका पॉलिटिकल स्पीचेस या आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे. जैसे अगर आर्टिकल वर्टिकल में क्या होता है कि आप ऐसे वर्ड्स सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप एकेडमिक्स में हैं, तो फिर लोगों को समझ में नहीं आती है. और इफ एट द एंड अगर आप जो आर्टिकल वर्टिकल लिखते हैं वही 200-300 लोग, वही सिमिलर लोगों के अंदर ही वो चलते रहता है, तो व्हाट्स द पॉइंट, मतलब लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा. तो
जी बिल्कुल बिल्कुल. डू यू थिंक नॉन वायलेंस से इतना ज्यादा हमने फेटिशाइज कर लिया है कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को?
वेपन्स ऑफ द वीक बोल के सोशल साइंस में वर्ड यूज किया था, तो उसका ये है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, स्पेशली जो दलित कम्युनिटी है, अपने जो रोजमर्रा जिंदगी में लाइक एवरीडे अगर उसको कहीं पे काम करना होता है, किसी मतलब किसी के जमीन में वो काम कर रहा है, जैसे मजदूर बन के काम कर रहा है, या फिर वो अपने लाइफ मतलब जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कई शहरों में जा रहा है क्योंकि गाँव में उसके पास तो जमीन है नहीं, और नरेगा में जो काम आता है, जो 100 दिन का जो काम आता है, उसको नहीं मिलता यूजुअली, वो बहुत कम मतलब मिलता है. और ये सब के बीच और अपने बच्चों का मतलब ख्याल रखने के लिए, यू नो, टू गिव देम बेटर एजुकेशन, दे मूव टू सिटीज, वहाँ पे ऐसे करते. तो दीज आर ऑल्सो वेज विथ विच दे फाइटिंग एज कास्ट, मतलब कि ठीक है ये जो कास्ट सोसाइटी है हमको मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे रही है, हमको लाइक बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन वो नहीं दे रही, तो हम उसके खिलाफ लड़के शहर चले जाएंगे या फिर कोई एक दूसरा मीन्स ढूंढ लेंगे. दीज आर ऑल्सो एवरीडे फाइट्स, दीज आर एवरीडे रेजिस्टेंस, वेपन्स ऑफ द वीक, जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दिखेगा नहीं. कि जो एक रेवोल्यूशनरी एक अंडरस्टैंडिंग है दिल्ली, मतलब दिल्ली सर्कल्स में, कि हाँ अगर आप बंदूक उठा लिए और चेगेवारा का कैप पहन के मतलब आप जाके जमींदारों को मार दिए तो दैट इज रेवोल्यूशन, बट इज नॉट ट्रू. मेरी माँ एक मतलब एक हेल्थ वर्कर थी, मतलब वो गांव हर गांव जाके मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती थी उड़ीसा में, मतलब इट्स अ वेरी माओइस्ट अफेक्टेड एरिया. तो वहाँ पे उसको वो स्पेस नेगोशिएट करना पुलिस के साथ, माओइस्ट लोग के साथ, एंड एज अ दलित वेमेन, एंड शी ऑल्सो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, मतलब वहाँ पे मतलब लेफ्ट ऑल हर लाइक वो हिंदू प्रैक्टिस सब छोड़ के क्रिश्चियन बन गई. तो दैट इट्सेल्फ ऑल्सो इज अ एक्ट, मतलब वो एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, एंड मेनी पीपल डू दैट. हर दिन आपको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ रहा है, हर दिन आपको मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, गाली दे देगा, आपको टाइम से पेमेंट नहीं करेगा, यू आर कमिंग होम, यू हैव टू फीड योर फैमिली, ये वो, लेकिन फिर भी आप अगले दिन उठ के नहीं, मुझे जीना है, मुझे काम करना है. सो दीज आर ऑल्सो एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि एक रोमांटिक रिप्रेजेंटेशन में फिट नहीं बैठता है. तो मुझे लगता है कि दिस इज वॉट पीपल लाइक पारंजीत, पीपल लाइक मारिस अल्वारेज कैप्चर्स, जैसे सरपटा परंपराएं हो गया, और फिर एक अलग अपने पारंजित का भी अलग मतलब दूसरे मद्रास हो गया, ऐसे कुछ कुछ मूवीज से अगर देखोगे तो दे आर कैप्चरिंग दैट एवरीडे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पे उसके उसके बच्चे भी है जिसको पढ़ना भी है, बट दे ऑल्सो फॉलोइंग इन लव, बट देर इज ऑल्सो पॉलिटिक्स हैपनिंग अराउंड, देर इज सम हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट टू इट. तो एक सोशल साइंस में उसको ये बोलते हैं, मतलब सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मतलब मैंने अभी अभी सीखा है तो मैं बोलूंगा ही, वो सिचुएटेडनेस बोलते हैं, मतलब कि यू आर सिचुएटिंग समबडी और सम ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर हिस्ट्री इन अ पर्टिकुलर कल्चर इन इन देयर एवरीडे लाइफ विच इज वेरी रियलिस्टिक. उनको मतलब ऐसा भी नहीं कि दलित इज लाइक अ वेरी इनोसेंट नाइव कैटेगरी, वो विक्टिम भी नहीं है ना, वो क्रिमिनल है. जैसे अगर प्रकाश झा का हो गया, आरक्षण हो गया, तो वो दलितों के बारे में बात करने के लिए उसने आरक्षण ही एक टॉपिक चुना, राइट? आर्टिकल 15 मतलब वायलेंस. सो देयर इज दिस वेरी स्टीरियोटाइपिकल प्रेजेंटेशन.
एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिनों पहले, द ग्रेट इंडियन किचन नाम से आई थी, और इट्स अबाउट वुमेन. जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे इट्स अबाउट वुमेन, एंड अगेन वो जो औरतों की लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी जैसे वो खाना बना रही हैं, वो किस तरीके से घिया काट रही हैं, वो किस तरीके से एक निगोशिएट कर रही हैं अपनी स्पेस अपने घर के अंदर, वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया. तो मेरे ख्याल से शायद उसी तरीके का सिनेमा आप भी उसकी बात कर रहे हैं. तो हमें कुछ रेकमेंड करेंगे क्या आप, कुछ ऐसे सिनेमा जो हमारे
सिनेमा में? तो अभी कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, पा रंजित है, मारी सलवा राज, बट मोस्टली तमिल, और लेकिन सिर्फ वो लोग भी नहीं, और एक दो मूवी है जैसे पलासा 1978 बोल के एक तेलुगु मूवी है, लव स्टोरी बोल के एक तेलुगु मूवी है, फिर ऐसे कुछ कुछ मूवीज हैं जो कि कास्ट को बहुत नुआंस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है और दलितों को ह्यूमेनाइज कर रही है, लाइक.
अच्छा, फिल्मों से मुझे एक और चीज, आप एक सवाल याद आया कि आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेरिट, ये होता क्या है मेरिट? एक तो ये मैं आपसे थोड़ा पूछना इस पे चाहूंगी, और दूसरा ये कि जो एक जो फिल्में आ रही हैं कतार से, कुछ अभी फिल्में हमने देखी, ट्रेलर्स वगैरह देखे, आपको क्या लग रहा है कि इन फिल्मों की वजह से क्या कल को हमारे संविधान के जो रिजर्वेशन लॉज हैं उनमें कहीं कोई ना कोई चेंज आ सकता है क्या?
पहली बात तो है कि मतलब मेरिट के बारे में मैं बात शुरू करूंगा, मेरिट से लेकर शुरू करूंगा मैं. तो जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो द फर्स्ट पीपल टू गेट इंग्लिश एजुकेशन, द फर्स्ट पीपल टू गेट इंग्लिश एजुकेशन, द फर्स्ट पीपल जिनको कि इंग्लिश एजुकेशन मिला, जो कि ब्यूरोक्रेसी में गए, एडमिनिस्ट्रेशन में गए, लॉयर, जर्नलिज्म, और जो मॉडर्न प्रोफेशंस है उनमें गए, वो थे अपर कास्ट हिंदूस. इनवेरिएबली अब तमिलनाडु ले लो, कर्नाटका ले लो, इसके ऊपर स्टडीज है, प्रॉपर मतलब स्टडीज है, वो गए. और दे डिड नॉट वॉन्ट दलित एंड लोअर कास्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और वो धीरे धीरे जाके रिजर्वेशन पे कल्मिनेशन टू रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन होने के बावजूद आप अगर इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, IITs देखेंगे, IIMs देखेंगे, बहुत सारे जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी अगर देखेंगे, तो 70% इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो भी ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 जो पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया में, पब्लिक सेक्टर हार्डली 2-3% ही हैं जिसमें कि रिजर्वेशन है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि 70% अपर कास्ट हिंदूस, 70% हु विल नॉट कम टू, मतलब उनका इंडिया में जो परसेंटेज है वो 10-12-15% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उनका इतना बड़ा प्रेजेंस है, उतना ज़्यादा प्रेजेंस है. और ऐसा नहीं कि वो मेरिट की वजह से है, वो इसीलिए है क्योंकि उनका एक्सेस, उनके पास रिसोर्सेस है, उनके पास गांव में जमीन है, उनके पास वो, उनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता वो स्कूल में जब जाते हैं, उनका मतलब डेली वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं होता है उनके पास. अगर 10th के बाद अगर कॉलेज में कहीं पढ़ना हो तो कोई चाचा मामा दिल्ली बॉम्बे मतलब बेंगलोर बनारस कहीं ना कहीं कोई तो होंगे ही उनके, तो वो सोशल नेटवर्किंग है उनके पास, थोड़ा बहुत कैपिटल भी है, मतलब पैसे भी है उनके पास, और जो कि दूसरों के पास नहीं है. सो बहुत ये बहुत बड़ा गैप है, तो इसलिए लोग और उसको वो लोग मेरिट, मतलब उनका एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरिट है. मैनुअल लेबर को बहुत नीचा देते, लाइक हु आर द पीपल हु, मतलब ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स कौन, इमारतें कौन बनाते हैं? मोस्टली लोअर कास्ट दलित पीपल बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं. आप देखोगे लाइक जो कारपेट जो बनाते हैं, आर्टिसंस जो ग्रुप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं, दिस आर मेजोरिटी लो कास्ट ग्रुप्स. एंड यू आर सेइंग कि वो उनके पास मेरिट नहीं है, आपके पास मेरिट है, राइट? दे आर द पीपल हु प्रोड्यूस फूड, दे आर द पीपल हु प्रोड्यूस ऑल ऑफ दिस. तो दैट्स अ वेरी मतलब इट्स अ बोगस आइडिया,
फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ,
हां फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन उन्होंने बना के रखा है कि इनको, इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास कुछ टैलेंट नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं. लेकिन रिजर्वेशन का आइडिया भी है कि वो रिप्रेजेंटेशन है, कि बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, सबका पार्टिसिपेशन होना है, दिस इज लाइक अ सेफ गार्ड. लेकिन उसके बावजूद आई मीन यू वॉन्ट बिलीव, JNU डिड नॉट हैव अ सिंगल OBC प्रोफेसर. सबसे बड़ा मतलब 50-55% से ऊपर का पॉपुलेशन है उनका, उनमें से एक प्रोफेसर आपका नहीं है जेएनयू में फॉर 30-40 ईयर्स दे डिडंट हैव। और अगर 400-450 फैकल्टी जो जेएनयू में, उसमें भी अगर लूटा के देख लीजिएगा, SC/ST फैकल्टीज भी और मुस्लिम फैकल्टीज भी वुड बी वेरी लेस, 50 नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ, गिन गिन के 50 नहीं आएंगे ये लोग। सो दैट इज द काइंड ऑफ मोनोपोली इनका है। और ये लोग अभी ऐसे भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने इंस्टीट्यूशन को वीक कर लिया, वो कर लिया, वैसा नहीं है। आपकी जुडिशियरी, आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपकी मीडिया, उसमें रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। एक तो है कि मतलब एक एंटी मुस्लिम हाइपर नेशनलिस्ट मूवीज का तो एक मतलब हुआ ही है, पद्मावत है आपका, फिर उरी, और ऐसे बहुत सारे मूवीज आई रिसेंटली। उसके बाद एक तो कास्ट प्राइड और एंटी रिजर्व, शेर सिंह राणा, वो शेर सिंह के ऊपर, मतलब कि हाँ एक राजपूत प्राइड के ऊपर है। और फिर अभी हुड़दंग हो गया, मंडल कमीशन के खिलाफ वो है, राइट। लेकिन अभी ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये लॉस चेंज कर पाएंगे, इसलिए लॉस चेंज नहीं कर पाएगी बिकॉज एक लोअर कास्ट पॉलिटिक्स उभर चुका है ऑलरेडी रिजर्वेशन की वजह से, तो आप उनको हर्ट नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट सेक्शंस ऑफ लोअर कास्ट पॉपुलेशन, दलित पॉपुलेशन एक सेक्शन, एक तबका है जो कि बहुत पॉलिटिसाइज्ड है रिजर्वेशन को लेकर, और अगर आप रिजर्वेशन को कुछ करेंगे तो वोट नहीं भी दे सकती है। तो इसीलिए दे आर वेरी केयरफुल, बट ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन के साथ ये लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे, दे आर डूइंग इट कि EWS ला लिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के मतलब अपर कास्ट स्टूडेंट्स को ले लिया, या फिर OBC सीट्स दूसरों को दे देना बोल के कि एप्लीकेंट्स नहीं है।
जो एक पॉलिटिक्स उभर कर आ रही है हमारे सामने, दलित पॉलिटिक्स या OBC पॉलिटिक्स भी उभर कर आ रही है, उसको अगर जब हम देखते हैं तो हमें एक अग्रेसिव दलित आइडेंटिटी दिखती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर चंद्रशेखर आजाद जी को ले लें तो एक काफी एक अग्रेसिव दलित आइडेंटिटी उनमें दिखती। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक अग्रेसिव दलित आइडेंटिटी है उसकी इस समय जरूरत है भारत में या नहीं?
हाँ देखिए, एक है कि जो दलित मूवमेंट जो है उसके अलग अलग फैसेट्स है, अलग अलग फैसेट्स मतलब उसका मतलब यह है कि जैसे अनूप कुमार है वो महाराष्ट्र में है, वो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, उनका ये है कि जो भी दलित बच्चे हैं, कुछ कुछ OBC बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको हम एजुकेशन देंगे, मतलब फ्री एजुकेशन, मतलब फ्री से कोच, फ्री कोचिंग करेंगे, उनको हायर एजुकेशन पहुंचाएंगे। पा रंजित थे वो सिनेमा बना रहे, राइट। जैसे मतलब मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं, इधर उधर कुछ कुछ लिख रहे हैं, और फिर बार बार उसको डिस्कोर्स में बना के रखे हैं कि ये सब भी कुछ कुछ हैं, राइट। सो उसका कल्चरल एस्पेक्ट है, उसका एक सोशल एस्पेक्ट है, उसका एक एजुकेशनल एस्पेक्ट है। तो दलित मूवमेंट जो है इट इज़ ग्रोइंग इन ऑल दिस फॉर्म, एंड दलित मूवमेंट हैज़ बीन यूजुअली बीन एंटी अपर कास्ट इंटरेस्ट। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये होता है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को देख के ही दलित मूवमेंट को मतलब जज किया जाता है कि अरे हाँ ये लीडर तो उसके साथ चला गया, वो लीडर तो उसके साथ चला गया। लेकिन जो पॉपुलर जो एक एवरीडे लाइफ है, इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट, वो हिंदू आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन नहीं करेगा। जो आदिवासी है झारखंड के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था पिछले साल कि हमको हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं है, हमको रिलीजन में हम अलग, हम हिंदू के खिलाफ नहीं है बट हमारा एक अलग रिलीजन है, वो सरना रिलीजन, हमको कास्ट चेंजेस में वो डालने दो। लेकिन वो सब डिस्कोर्स ये जो दिल्ली में बैठे हुए जो लिबरल लोग हैं उनको प्रमोट नहीं करेंगे, बट दिस आर ऑल्सो चैलेंजेस टू डोमिनेंट हिंदू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ भी वायलेंस उस नाम से कर रहे कि अरे हम तो सब हिंदू हैं और खतरा मुस्लिम से है।
जी जी जी, कि अगर एक लेमैन है, अगर उसको समझना है दलित हिस्ट्री के बारे में, दलित एक्टिविज्म के बारे में, तो आप क्या उसे रेकमेंड करेंगे, किस तरीके का मीडिया उसे रेकमेंड करेंगे? अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे नाम हो जो आप चाहें कि वो इंसान पढ़े या सुने या देखे तो वो हमें थोड़ा बताएं।
एक तो है कि अभी जो बहुत सारे जो एजुकेटेड ग्रुप्स हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनके लिए इंग्लिश प्लेटफॉर्म्स तो बहुत है, जैसे दलित कैमरा है, राउंड टेबल इंडिया है, ऐसे कुछ कुछ है जहाँ पे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और आपको अगर सोशल मीडिया वीडिया में है तो फिर कुछ कुछ लोग हैं जो लिखते रहते हैं बार बार, जैसे बेकरी प्रसाद प्रसाद हो गए, प्रियंका पॉल, ऐसे कुछ कुछ लोग लिखते रहते हैं बार बार, तो वो इंग्लिश में हो गया। लेकिन अगर दलित हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें रीजनल फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का दलित हिस्ट्री बहुत डिफरेंट दलित हिस्ट्री होगा देन बिहार का दलित हिस्ट्री, तो इसीलिए आपको रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी आपको देखना पड़ेगा कि उस लैंग्वेजेस में कौन कौन से पब्लिकेशन हैं, कौन कौन से राइटर हैं। और उसमें जैसे बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं, बिहार में दलित हिस्ट्री क्या है, बिहार में मुसाहर है, पासवान है, डोम है, तो डोम जाति के बारे में आप ढूंढेंगे हिंदी में, या फिर भोजपुरी में तो मुझे नहीं लगता है होगा कुछ, लेकिन अगर हिंदी में अगर कुछ देखोगे कि उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, उनके कुछ कुछ लीडर है, उनके कुछ कुछ फेस्टिवल है, उसके बारे में पढ़ लेना। तमिलनाडु में अगर जाओगे तो वहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग ही कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं, उनका एक अलग ही हिस्ट्री होगा। तो मुझे लगता है कि वर्नाकुलर जो एम्फेसिस है वो देना चाहिए। यूपी में चमारों का कुछ हिस्ट्री होगा, पासियों का कुछ हिस्ट्री होगा, वाल्मियों का कुछ हिस्ट्री होगा, उनके कुछ कुछ पॉलिटिक्स होगी। तो मैं तो नाम ऐसे कुछ स्पेसिफिक बता नहीं पाऊंगा, पर वो रीजन स्पेसिफिक होता है।
जी जी,
रीजन जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन उस टाइम की यूपी के बेस्ड है, सूरजपाल चौहान
जी
वो यूपी के ऊपर, मतलब उस टाइम के यूपी के ऊपर बेस्ड है कि कास्ट कैसे प्रैक्टिसेस की जाती थी। तमिलनाडु में एक राइटर है बामा बोल के, दलित वुमेन राइटर है
जी,
दलित क्रिश्चियन वुमेन राइटर है, तो तमिलनाडु के बारे में बताती है। मनोरंजन व्यापारी बोल के वो बंगाल के बारे में बताता है कि बंगाल के पार्टीशन के टाइम कैसे जो अपर कास्ट बंगालीज है उनको किस तरीके से सेटलमेंट दिया गया और दलितों को कैसे भगा दिया गया।
जी, आपने बहुत अच्छी बेहतरीन एक पॉइंट ये बताया कि मतलब जो वर्नाक्युलर फीचर है वो बहुत हमें एम्फेसाइज करना चाहिए, सिर्फ एक दलित हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि किसी और भी, अगर आप कुछ भी समझना हो तो हर चीज़ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं समझी जा सकती। तो ये थे सुमित सामोस और इनसे हमने बात की दलित हिस्ट्री के बारे में, हमने बात की पॉप कल्चर के बारे में, उनके रैप के बारे में। तो थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट।
थैंक यू साहिबा,
बाय।
ये थे आपके और मेरे साथ सुमित समोस, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में ऐसी कई चीजें हमें बताई, ऐसी कई बारीकियां नुआंसेस हमसे डिस्कस किए जो हम शायद अखबारों में पढ़ते हैं या पेपर्स में पढ़ते हैं और रिसर्च पेपर में पढ़ते हैं एक्चुअली, और हमें समझ नहीं आते कि इतने बड़े बड़े शब्द क्या हैं। वो बहुत बेहतरीन तरीके से सुमित ने हमें समझाए। उम्मीद है आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हाँ हाँ, थोड़ा लंबा था, मगर कह दो सिमरन कि तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुमने सोचा ही नहीं कि ये वक्त कब गुजर गया। चलिए, अब मेरे जाने का भी समय हो चला है, मगर आपको सुमित के इस गाने के कुछ शब्दों के साथ छोड़कर जाना चाहूंगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं @abplivepodcast पर ट्वीट करके, या फिर आप मेरे पर्सनल ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट कर सकते हैं @झांसी से रानी। मैं हूँ साहिबा खान, पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित साहब ने, और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी अंबेडकर जयंती। नमस्कार।
मेरे काले रंग के आगे तेरे गोरे चमड़े फीके हैं, दुश्मनों से लड़ना कैसे पुरखों से हम सीखे, रास्ते सर खास है अपने सारे पास में, अस्तित्व के वास्ते मिटा दे सारे दूरियां, घटा दे सारे फासले, मिटा दे सारे दूरियां, घटा दे सारे फासले।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के टाइम पे न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।